नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु,
मित्र। प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने परमेश्वर के बहुत ही गंभीर बातों को सीखा है कि एक आलसी व्यक्ति किस प्रकार परमेश्वर से अलग हो जाता है। आज हम अपने अध्ययन में और भी नई बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि आज हर एक के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। प्रत्येक जन अपने जीवन में इस बात को महसूस कर सके कि आप उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए भी जो अपने जीवन में निराश हैं, बीमार अवस्था में हैं या किसी प्रकार के तनाव और दबाव में हैं, अपने जीवन के उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज के वचन के द्वारा आप उनकी सहायता करें, हम सब के साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब भी हम सुलेमान के बुद्धि के वचनों का ही अध्ययन कर रहे हैं। यह विशेष करके युवा वर्ग के लिए है, परंतु प्रत्येक विश्वासी के संबंध में व्यवहारिक है। परमेश्वर के वचन का पढ़ना और अध्ययन करना जीवन पर निश्चित प्रभाव डालता है। यह या तो आपको परमेश्वर के निकट ले आएगा या परमेश्वर से दूर ले जाएगा। परमेश्वर के वचन के प्रति आपकी प्रतिक्रिया तटस्थ नहीं रहेगी। मेरे मित्रों, नीति वचन में यहाँ पहली बार शराब के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। मेरे विचार में शराब ने अन्य सब आपदाओं से अधिक राष्ट्रों को, व्यापार को, घर परिवार को, व्यक्तिगत जीवन को नष्ट किया है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और नीति वचन 20 अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाला है। नए नियम में दाखरस के विषय मतभेद है। मेरा अपना विचार है कि गलील के काना नगर में प्रभु यीशु ने विवाहोत्सव में जो दाखरस बनाया था उसमें नशा नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम पाते हैं उसे नशीला पदार्थ बताने वाले अन्याय करते हैं। कहा जाता है कि इसराइल के गर्म क्षेत्रों में आप यदि दाखरस को भरकर रख दें तो वह अपने आप ही गर्मी द्वारा मदिरा बन जाता है, परंतु काना के विवाहोत्सव में प्रभु ने दाखरस नहीं पानी काम में लिया था। वहां क्यूवन का तो प्रश्न ही नहीं था। हमें स्मरण रखना है कि विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान होता है और धार्मिक अनुष्ठानों में खमीर संबंधित कोई वस्तु काम में नहीं ली जाती थी। यही कारण था कि फसह के पर्व में जब प्रभु यीशु ने प्रभु भोज ठहराया था तब दाखरस खमीर की प्रक्रिया में नहीं हो सकता था। परमेश्वर के वचन में नशा वर्जित है और यह इसका प्रमाण है। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। आज अनेक जन इसके शिकार हैं। नशे में गाड़ियां चलाने के परिणाम स्वरूप अनेक दुर्घटनाएं होती है और अनेक मनुष्य मरते हैं या विकलांग बन जाते हैं। इसके बुरे प्रभाव के कारण अनेक जन मानसिक अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ऐसी खबरें कम सुनने को मिलती है। हम नशीली पदार्थों के उपयोग के बारे में सुनते हैं। शराब भी तो नशीला ही पदार्थ है। मुझे एक अधिकारी ने बताया कि नशीले पदार्थ से संघर्ष के समय शराब में रुचि दिलवाना आरंभ किया गया था, क्योंकि नशीले पदार्थों से शराब का व्यवसाय गिर रहा था। उनके लिए एक युवक शराबी बन सकता था। परंतु नशीले पदार्थों का सेवन उसे न करने दिया जाए। यह शराब व्यवसाय की दया और उदारता थी। युवाओं को भी अवसर मिल गया कि शराब पीने वालों के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को स्वीकार्य कहें। मैं उनसे सहमत हूँ। इससे पहले कि हम युवाओं पर नशीले पदार्थों के लिए उंगली उठाएं, हम वयस्कों को पहले शराब पीना छोड़ना होगा। कलीसिया के बाहर का आडंबर कलीसिया के भीतर के आडंबर से बहुत कम है। मेरे मित्रों, शराब ने नूह का सर्वनाश किया और उस दिन से आज तक शराब का एक बहुत बड़ा प्रकोप है। शराब एक समस्या ही रही है। दवाओं में तो शराब लाभकारी है, परंतु उसे ऐसे ही पीना खतरनाक है। शराबियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। इस दानव के विरोध सिर उठाना भी खतरनाक है। मैं तो यही भविष्यवाणी कर सकता हूं कि एक राष्ट्र मिसाइल की अपेक्षा शराब से नष्ट होगा। नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। एक मसीही विश्वासी की पहचान है कि वह झगड़े रगड़े नहीं बढ़ने देता है। किसी ने कहा है कि हमें भलाई का बदला चुकाना है, न कि बुराई का। हमें अपने शत्रु को बदला नहीं देना है, इसकी अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। क्योंकि रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में परमेश्वर कहता है कि बदला लेना उसका काम है, वही बदला देगा। यही कारण है कि परमेश्वर हमें बदला लेने से रोकता है। बदला लेना विश्वास के मार्ग से पथ भ्रष्ट होना है। परमेश्वर बदला लेने का काम हमसे अच्छा कर सकता है। यही कारण है कि आज जब मसीही सताए जाते हैं तो वे कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उनसे लड़ने वाला परमेश्वर है। बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर की संतान को फिलिपी की कलीसिया को लिखे पौलुस के वचन स्मरण रखने आवश्यक हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। मैथ्यू आसाइंट ने कोमलता को मधुर तर्क कहा है। इस नीति वचन का अर्थ है कि तुम्हारा मधुर तर्क सब मनुष्यों पर प्रकट हो। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है। यह कैसा महत्वपूर्ण है। नीति वचन 20 उसके 4 पद में लिखा है, आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता है। इसराइल में बसंत ऋतु की फसल के लिए शीत ऋतु में भूमि जोतनी पड़ती है। आलसी मनुष्य कहता है कि ठंडा बहुत है और आग तापता बैठा रहता है, और कहता है कि ठंड कम होने पर वह काम करेगा, परंतु ठंड निकल जाने पर देर हो जाती है। वह बीज डालने पौधा लगाने का समय होता है। इस पद में हंसी की बात भी है। इससे मुझे एक हास्य कथा स्मरण आती है। एक आलसी के घर की छत बरसात में टपकती थी। उसने कहा कि बरसात में उसे सुधारना उचित नहीं, परंतु जब वर्षा ऋतु का अंत हो गया तो उसने कहा कि अब आवश्यकता ही नहीं है। मेरे मित्रों, अब हम नीति वचनों को देखेंगे कि वे परस्पर संबंधित प्रतीत नहीं होते हैं, परंतु भलाई और नैतिकता के विचार में वे संबंधित हैं। नीति वचन 20 के 6 पद में लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। यहाँ विषय है कृपा। आगे लिखा है नीति वचन 20 के 7 में, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। यहाँ मुख्य शब्द है खराई। नीति वचन 20 के 8 में है, राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। अपने दृष्टि से सब बुराई को छांट लेता है, अर्थात अपने राज्य का शोधन करता है। नीति वचन 20 उसके 9 में लिखा है, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। यहाँ दो शब्द मुख्य है, पवित्र और शुद्ध। नीति वचन 20 उसके 10 में लिखा है, घटते बढ़ते भटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। यह सच और झूठ की तुलना है। नीति वचन 20 के 11 में हम पढ़ते हैं, लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। यहाँ बच्चों तक के सदाचार पर बल दिया गया है। तब हम नीति वचन 20 के 12 में पढ़ते हैं, सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। जी हाँ, यहाँ विचार है कि बुद्धि काम में ली जाए। परमेश्वर ने आपको आंख और कान दिए हैं कि आप देखें और सुनें। यह रेल की पटरी पार करते समय ही नहीं, प्रतिदिन जीवन का सामना करना भी ऐसा ही है। नीति वचनों के इस संपूर्ण भाग में हम एक महान सिद्धांत को देखते हैं। पहला, कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया है अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूं? क्या आप कह सकते हैं? मेरे मित्र, निश्चय ही ना तो आप और न ही मैं यह कह सकता हूं। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो अपने प्रयास द्वारा पवित्रता का दावा करे। पालने में रखा एक शिशु भी नहीं कह सकता। शिशु भी क्रोध प्रकट करता है। मेरा छोटा बेटा है, पहले तो पाप से मुक्त प्रतीत हुआ, परंतु मैंने देखा कि वह भी क्रोध करता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह सांस भी रोक लेता था। मुझे तब बोध हुआ कि शिशु हमारी नाईपूर्ण भ्रष्टता के अधीन होता है। अतः मनुष्य अपने स्वाभाविक अवस्था में कभी नहीं कह सकता कि वह हृदय का पवित्र और पाप से शुद्ध है। मेरे मित्रों, आपको स्वर्ग के लिए स्वर्ग का जीवन पाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 3 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि मनुष्य जब तक नए सिरे से न जन्मे वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु ने जिससे यह कहा था वह एक अति धर्मी मनुष्य था। ऐसा कोई नहीं है जो स्वयं को भला, शुद्ध, उचित और पवित्र कह पाएगा जब तक कि वह उद्धार के लिए प्रभु यीशु के पास आकर उसकी धार्मिकता को प्राप्त न करे। तब वह उस प्रिय में ग्रहण योग्य ठहरेगा, परंतु महिमा में प्रवेश करने तक पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव हमारा साथ नहीं छोड़ता है। नीति वचन में एक बात पर ध्यान दें कि भलाई और खराई परमेश्वर के लिए अर्थ रखती है। शुद्धता का भी मूल्य है। परमेश्वर के संतान का चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि अनुग्रह का सुसमाचार महिमान्वित हो। मैं अनेक वर्षों से एक प्रश्न सुनता आ रहा हूँ, यदि आपको मसीही होने के कारण बंदी बनाया जाए तो क्या आप में अपराध स्वीकारन का पर्याप्त प्रमाण होगा? मान लीजिए कि आपको कोर्ट में खड़ा करके आरोप लगाया जाए यह एक मसीही है, तो क्या आपको अपराधी घोषित होने के लिए या करने के लिए वह उचित प्रमाण होगा या आपको मुक्त कर दिया जाएगा? क्या वे आपके जीवन को जांच कर कहेंगे कि आप एक मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं? क्या वे पाएंगे कि आप खराई से नहीं जी रहे हैं? क्या उन्हें आप में अच्छाई नहीं दिखाई देगी, पवित्रता की इच्छा नहीं दिखाई देगी? मेरे मित्रों, इन नीति वचनों में दूसरा विचार है। परमेश्वर ने आपको आंख और कान दिए हैं, उनको काम में लें। ठहरें, देखें और सुने। जीवन में आंख बंद करके न चले, देखते हुए भी अंधे न बने। अपनी आंखें काम में लें, अपने कान खुले रखें। परमेश्वर ने आपको बुद्धि भी दी है, परमेश्वर ने आपको सूझबूझ दी है। सुनिए परमेश्वर क्या कहता है। आप अपने आप पवित्र नहीं हो सकते, केवल परमेश्वर आपको पवित्रता प्रदान कर सकता है। परमेश्वर आपको उसके सामने खड़ा कर सकता है जो आपके पापों का दोष धोकर आपको इस संसार में खराई से चलने में योग्य बना सकता है। नीति वचन 20 के 13 पद में लिखा है, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा, आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। वह कहता है काम करो। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने भी थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से यही कहा था। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 3:10 में, यदि कोई काम न करे तो उसे भोजन भी न मिले। वे प्रभु यीशु के आगमन के बारे में अत्यधिक उत्साह के कारण काम छोड़कर उसकी प्रतीक्षा में बैठ गए थे। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि कामकाज आप छोड़कर यीशु की प्रतीक्षा में आकाश को घूरते रहें। प्रभु के आगमन की सच्ची प्रतीक्षा विश्वासी को पहले से भी अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देगी। नीतिवचन 20:14 में लिखा है, मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। यह हास्यास्पद पद है। काश आप इसमें हास्य देखें। उदाहरण के लिए, कार खरीदने जाता है, वह कार बेचने वाले से कहता है कि वह कार सीखने योग्य नहीं है, उसके टायर घिस चुके हैं, उसके पिछले भाग में बहुत कबाड़ खाना है, खड़खड़ाहट की आवाज आती है, अतः मैं तो बस इतना ही पैसा दूंगा। कार का मालिक कहता है, ठीक है ले जाओ। खरीदार कहता है, इसका मूल्य वास्तव में इतना भी नहीं है, परंतु मैं इसे ले लेता हूँ। अब कार में बैठकर घर जाता है और अपनी पत्नी तथा पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, देखो देखो मैंने कैसा सौदा किया है। जी हाँ, यह मनुष्य का स्वभाव है। नीतिवचन 20:15 में लिखा है, सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी है। आज हमारी मूल्य की परिभाषा ही बदल गई है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं द्वारा आंका जाता है, न कि ज्ञान से। नीतिवचन 20:16 में लिखा है, जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। मनुष्यों से व्यवहार करते समय जमानत रखवाएं, नहीं तो आप हानि उठाएंगे। नीतिवचन 20:17 में लिखा है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। जी हाँ, मनुष्य सोचता है कि वह छल करके बच गया है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। कोई बचकर जा नहीं सकता, परमेश्वर इसका ध्यान रखता है। नीतिवचन 20:19 में लिखा है, जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। वह मनुष्य जो आपसे मुंह पर मीठी बात करके आपके पीठ के पीछे बुराई करे, तो ऐसे मनुष्यों से आप सावधान रहें। चाहे वह कलीसिया का सेवक ही क्यों ना हो, चाहे वह आपका मित्र या पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपको सचेत रहना है। नीतिवचन 20:20 में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। यदि आपके माता पिता गर्व करने के योग्य हैं, तो उन पर अवश्य ही गर्व करें। यदि उनके बारे में आपके पास अच्छी बात कहने को नहीं है, तो आप चुप रहें, जैसा कि अनेकों के साथ होता है। यह नीतिवचन ऐसा ही कहता है। हाम ने यही गलती की थी। उसका पिता नूह दाखरस के नशे में अचेत पड़ा था। हाम को चुपचाप वहां से चला जाना था, परंतु उसने जाकर सबसे कह दिया। कुछ बातें मेरे मित्रों ऐसी होती हैं कि आप सबसे नहीं कह सकते हैं। कहावत यहाँ पर यही होता है कि घर का भिदिया लंका ढाए। नीतिवचन 20:24 में लिखा है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलना समझ सके, आदमी कैसे अपना चाल चलन समझे, केवल पवित्र आत्मा ही हमें बता सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह उसकी अगुवाई करना चाहता है। जी हाँ, हमें भी उसकी अगुवाई की आवश्यकता है। नीतिवचन 20:25 में लिखा है, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। यदि आपको आत्मविश्वास ना हो तो शपथ ना खाएं। भली भांति सोचे बिना परमेश्वर को समर्पण न करें। परमेश्वर को ऐसे भावनात्मक निर्णय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज ऐसे अनेक निर्णय लिए जाते हैं जो भावनापूर्ण होते हैं। नीतिवचन 20:27 में लिखा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। ध्यान रखें, यह दीपक है ज्योति नहीं। मनुष्य की आत्मा ज्योति का पात्र है। मनुष्य केवल दीपक है जो केवल पवित्र आत्मा के अंतर्वास पर ज्योति देता है। आपको 10 कुंवारियों का दृष्टांत याद होगा। 5 समझदार थी और 5 मूर्ख थी। वे केवल दीपक थी। तेल के बिना ज्योति नहीं उत्पन्न होती है। नीति वचन 20 के 29 पद में लिखा है, जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। जी हाँ, यह नीति वचन कहता है कि अपनी आयु के अनुसार काम करो। युवक को खिलाड़ी होना है और वृद्ध पुरुष जवानी न दिखाए। वह अपने आप को मूर्ख बनाएगा। वह अपनी आयु के अनुसार व्यवहार करे। उसे बुद्धि दिखाने की आवश्यकता है। सफेद बालों का प्रदर्शन ऐसा ही होना है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि हम उसके निकटता में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। आज मुझे और आपको इस वचन के प्रकाशन में झांक कर देखने की आवश्यकता है कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करे। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सागर तू है गहरा, जिसको खोजे ये मन मेरा।
इतना पावन नाम है तेरा, पल पल तुझको सब कुछ मेरा।
तू ही प्रभु, हाँ। जय
जय जय जय, जय, जय।